जी हाँ, और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों के सागर में गोता लगाने वाले हैं।
जी हाँ, और उनकी एक बहुत ही अद्भुत शिक्षण सोहम साधना को समझने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये साधना व्यक्तित्व को, परिवार को और यहाँ तक कि समाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
और इसके लिए हमारा स्रोत है पूज्य गुरुदेव की पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है का 8वां अध्याय।
तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये विचार ही कितना दिलचस्प है कि कैसे बस एक तस्वीर और हमारी अपनी सांसों की आवाज हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ सकती है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर की उपासना के लिए सोहम साधना को एक बहुत ही उत्तम माध्यम माना है।
तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
इसकी शुरुआत होती है अपने लिए एक ध्येय निश्चित करने से, या जिसे पुरानी भाषा में कहें तो एक इष्ट देव चुनने से।
अच्छा, तो मतलब सबसे पहला कदम है अपने इष्ट देव को चुनना, जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु।
हाँ, कोई भी, जिनका कोई भी सुंदर सा चित्र या प्रतिमा हो।
और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस चित्र को ऐसी जगह रखें जहां बार बार नजर पड़ती हो, फिर सुबह शाम उस चित्र को सामने रखकर उसके एक एक अंग को ध्यान से देखना है।
जी, यहाँ पर बात सिर्फ देखने की नहीं है बल्कि मन को साधने की है।
मन को साधने की।
हाँ, प्रक्रिया ये है कि कुछ देर चित्र को आंखों से देखें, फिर आंखें बंद करके उसी रूप का ध्यान करें।
अच्छा, तो पहले देखना, फिर आंखें बंद करके उसे मन में देखना।
बिल्कुल, और ये क्रम लगातार, मतलब 1-2 घंटे तक जारी रखने से अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि आंखें बंद करते ही वह चित्र मानस नेत्रों के सामने वैसे ही साफ दिखाई देने लगता है
जैसे खुली आंखों से देख रहे हो।
जी बिल्कुल वैसे ही, और समय के साथ ध्यान में दिखने वाली यह प्रतिमा और भी ज्यादा साफ और चमकदार होती जाती है।
और मुझे लगता है यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। ये केवल एक जड़ तस्वीर नहीं है, बल्कि उसमें ईश्वरीय प्राण प्रतिष्ठा की भावना करनी है।
आपने सही पकड़ा,
मतलब ये मानना कि ये एक सजीव देवता है जो सब कुछ सुनता है, जानता है और अनुभव करता है।
जी, और इसमें 2 तरह की प्राण प्रतिष्ठा शामिल है।
2 तरह की?
पहली है शारीरिक, जिसमें हम इष्ट देव के लिए सबसे उत्तम शारीरिक सौंदर्य की कल्पना करते हैं। सुदृढ़ शरीर, बड़े नेत्र, लंबी नाक, गोरा गुलाबी चेहरा,
एक आदर्श छवि।
हाँ, ये कल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जैसा अपने इष्ट देव को सोचते हैं वैसी ही श्रेष्ठता अपने लिए भी मांगते हैं।
अच्छा,
और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक प्राण प्रतिष्ठा।
मानसिक प्राण प्रतिष्ठा,
इसमें इष्ट देव में केवल सात्विक गुणों की स्थापना करनी है, जैसे प्रेम, दया, क्षमा, सहायता, सेवा, उदारता, त्याग,
करुणा और परमार्थ।
बिल्कुल,
यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है ना?
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि अपनी मान्यता में इष्ट देव के साथ कोई भी तामसिक गुण नहीं जोड़ना चाहिए,
जैसे चोरी, व्यभिचार, छल या निर्दयता।
जी,
यह एक बहुत बड़ी भूल होगी, ऐसा करने पर घातक परिणाम हो सकते हैं।
मतलब जैसे किसी मंत्र का उल्टा जाप करने से हानि होती है।
ठीक वैसे ही, ध्यान का उद्देश्य केवल सात्विक गुणों को प्राप्त करना है, ताकि उनकी भक्ति से प्रसाद स्वरूप वही गुण हमें मिल सकें।
तो चलिए अब इस साधना के मूल तत्व सोहम को समझते हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव ने इसके अभ्यास का तरीका भी बताया है। प्रातःकाल शांत और एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठें, आंखें बंद, हाथ गोद में और शरीर बिल्कुल ढीला।
हाँ,
और जब मन में इष्ट देव की छवि स्थिर हो जाए तब सांस की चाल पर ध्यान केंद्रित करना है।
सांस की चाल पर,
अध्यात्मवेत्ता जानते हैं कि जब सांस नासिका से भीतर जाती है तो सो शब्द की सीटी जैसी ध्वनि होती है,
सो,
और जब बाहर निकलती है तो हाँ की ध्वनि होती है,
सो हाँ का अनुभव करे।
तो सो का अर्थ हुआ परमात्मा या इष्ट देव।
हाँ,
और हम का अर्थ हुआ मैं या जीवात्मा।
बिल्कुल,
ये तो वही मैं हूं का भाव है।
इसे और गहराई से बताया गया है।
कैसे?
सो ध्वनि के साथ जब सांस भीतर जाए तो ये भावना करनी है कि इष्ट देव का ईश्वरत्व हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है,
उनके सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ रहे हैं।
जी, और जब हम ध्वनि के साथ सांस बाहर निकले तो ये भावना करनी है कि ये जीवात्मा, ये मैं, वर्तमान शरीर को छोड़कर उस ध्येय प्रतिमा में व्याप्त हो गया है
और एक नया जीवन प्राप्त कर लिया है।
वाह
जी,
तो जब कोई इस अभ्यास को नियमित रूप से करता है तो इसका परिणाम क्या होता है?
देखिए, इस साधना से मन को वश में करने और एकाग्रता लाने में बहुत मदद मिलती है।
वो कैसे?
क्योंकि इसमें सूक्ष्म शरीर की पांचों इंद्रियां और मन सब एक ही स्थान पर लग जाते हैं, सब कुछ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है।
बिल्कुल। और अभ्यास दृढ़ होने पर पहले समाधि की छाया यानी इष्ट देव की हल्की छवि दिखने लगती है,
एक झलक जैसी।
हाँ, फिर मन की शक्ति बढ़ने पर इष्ट देव वास्तविक लगने लगते हैं। उस अवस्था में नासिका कान जैसी इंद्रियों का काम छूट जाता है और केवल इष्ट देव का ध्यान रह जाता है।
और जब साधक पूरी तरह इष्ट देव में खो जाता है
तब उसे एक स्वर्गीय अनुभव होता है, एक अवर्णनीय आनंद मिलता है।
पूज्य गुरुदेव ने इसकी तुलना उस भिखारी से की है जिसे अचानक खजाना मिल जाए।
हाँ,
या उस दुर्बल व्यक्ति से की है जिसके शरीर में अचानक बिजली की तरह शक्ति दौड़ने लगे।
बिल्कुल। साधक अपनी स्वार्थ बुद्धि की जगह दया, करुणा और उदारता से भर जाता है।
और इसी आत्मविस्मरण, तल्लीनता और बेहोशी की अवस्था को समाधि कहते हैं।
जी, यह अभ्यास से सहज ही प्राप्त होती है, जैसे मशीन के पुर्जों में एक बार तेल पड़ जाने पर वे सरलता से चलते रहते हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है।
पूछिए।
पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ईश्वर निष्प्रिय और समदर्शी है, मतलब वो किसी की निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता और प्राणियों को उनके कर्म फल भोगने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है।
सही बात है।
तो फिर ये प्रार्थना और उपासना क्यों?
इसका जवाब बहुत ही तर्कसंगत है। उपासना एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है।
मानसिक व्यायाम, ये दिलचस्प है।
जैसे व्यायाम शाला में मुदगर उठाने से पहलवान अपना शारीरिक बल बढ़ाते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
उसी प्रकार इस मानसिक व्यायाम से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं।
मतलब हम ईश्वर को बदलने के लिए नहीं,
नहीं,
बल्कि स्वयं को बदलने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह प्रक्रिया कर रहे हैं।
आपने बिल्कुल सही समझा। प्रार्थना और पुरुषार्थ एक ही भाव के दो रूप है।
तो आज के इस चर्चा का सार यही है कि सोहम साधना एक शक्तिशाली तकनीक है,
एक ऐसी तकनीक जिसमें कल्पना, भावना और श्वास का अद्भुत मेल है।
यह केवल एक पूजा विधि नहीं बल्कि आत्म रूपांतरण का एक वैज्ञानिक मार्ग है।
जी, इन स्रोतों से यह स्पष्ट है कि ये साधना एक व्यक्ति को कैसे बदल सकती है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर समाज में बहुत से लोग इस तरह का मानसिक व्यायाम करके अपने भीतर करुणा और सेवा जैसे गुणों को विकसित करने लगे
तो
हमारे समुदाय और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
एक बहुत ही गहरा विचार। इस अद्भुत विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
आज के लिए बस इतना ही।